ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करके ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कॉट SCOT की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगांतर की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का ये एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पीएम इंटर्नशिप योजना के उत्साहजनक परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने और भविष्य के लिए कार्यबल के निर्माण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री ने राज्य में कानूनों के शीघ्र क्रियान्वयन पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। लाखों लोगों के इस जमावड़े से न केवल प्रयागराज की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में भी तेजी आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाशिक में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की समीक्षा की तैयारियों के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यातायात और भीड़ प्रबंधन, आवास सुविधाओं, क्षेत्र में नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के अलावा बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा की गई। श्री फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को नाशिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को एक धार्मिक गलियारे और नाशिक को एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय और नीरज बसोया ने नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिरलान और वंदना कुमारी ने भी नामांकन भरे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों में जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा लेख और सुरक्षा लॉकर रखने वाले सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए नामांकन करने की आवश्यकता को दोहराया है। एक अधिसूचना में RBI ने बैंक बोर्डों की ग्राहक सेवा समिति CSC को समय समय पर नामांकन कवरेज की समीक्षा करने को कहा है। इस साल 31 मार्च से शुरू होने वाले तिमाही आधार पर RBI के दक्ष पोर्टल पर प्रगति की रिपोर्ट भी देनी होगी। हाल ही में एक पर्यवेक्षक मूल्यांकन से पता चला है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामांकन उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से नामांकन सुविधा के लाभों को प्रचारित करने को कहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन घने कोहरे की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और अपने सभी मैचों में अजेय रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।